प्रबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुः भूतबले प्रणीतं तं वन्दतत्त्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें छठवी पुस्तक में चौथा प्रदेश बंध अधिकार चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 91 पर। अब यहाँ उत्तर प्रकृति की प्रदेश बंध की प्ररूपना चल रही है। आप शुरू से आए हैं उत्तर प्रकृति में, नहीं आए? मूल प्रकृति की तो बात हमने देखी थी, कहाँ उत्कृष्ट बंध होता है, कहाँ जघन्य होता है, थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको। तो जो मूल प्रकृतियों के खाते में जितना प्रदेश, जितने परमाणु आए हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके उत्तर प्रकृतियों में किस प्रकार से होता है, ये बात यहाँ चलेगी। तो हमने देखा था कि ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, तो उसमें सर्वघाती द्रव्य भी है और देशघाती द्रव्य भी है। सर्वघाती द्रव्य 5 को मिलता है और देशघाती द्रव्य 4 को मिलता है। इन्हें 4 को मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, उनको देशघाती भी मिलता है और सर्वघाती भी मिलता है। तो सर्वघाती द्रव्य पूरा कितना है, तो कहते जो ज्ञानावरण के हिस्से का जो द्रव्य है उसके अनंतवा भाग सर्वघाती का है और वो 5 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अनंत बहुभाग देशघाती का है वो 4 में। तो 4 में किस कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मति ज्ञानावरण में थोड़ा ज्यादा है, फिर श्रुति ज्ञानावरण थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, इस तरह से। तो उसके लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे भागार देना, किस तरह से विभाजन करना, उसकी विस्तार से बात आई है, जो इसमें नहीं है। इस पुस्तक में हमने कर्मकांड के आधार से देखे। दर्शनावरण में क्या है, तो अनंत का भाग देना, अनंतवा भाग जो है वो 5 निद्रा और केवल दर्शनावरण 6 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो देशघाती जो है वो किस में हो जाएगा, दर्शनावरण के। देखो सर्वघाती तो सब में जाएगा, इन 9 के लिए आपको प्रकृति पता है कौन सी है,
निद्रा,
निद्रा, निद्रा, निद्रा, निद्रा प्रचला और केवल दर्शनावरण, ये सर्वघाती है। और कितने रह गए अभी, बाकी कौन सी प्रकृतियां हैं जो देशघाती है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, वो देशघाती। 3 में देशघाती का द्रव्य जाएगा और 9 में सर्वघाती का जाएगा। अनंतवा भाग तो सब 9 में चला जाएगा और ये देशघाती का द्रव्य मैक्सिमम द्रव्य तो उसी में है, वो चक्षु दर्शनावरण में ज्यादा है, अचक्षु में थोड़ा कम है। और किसमें अनंतवा भाग है, वो भी स्त्यान वृद्धि में सबसे ज्यादा, फिर निद्रा तक कम होते होते आए, निद्रा प्रचला तक, और फिर लास्ट वाला जो है केवल दर्शनावरण।
ये क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं,
प्रदेश बंध, परमाणु की संख्या। जब बंध होता है तो एक समय प्रबद्ध बनता है तो वो 8 मूल प्रकृतियों में विभाजित होता है और मूल प्रकृतियों का द्रव्य उत्तर प्रकृतियों में विभाजित। वो किस तरह से है तो हम इसको कहेंगे ज्ञानावरण में क्रम से, जिस क्रम से हम प्रकृतियों के नाम बोलते हैं उस क्रम से हीन हीन द्रव्य दिया जाता है, दर्शनावरण में भी हीन हीन दिया जाता है, अंतराय में भी उल्टे क्रम से दिया जाता है। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य आगे अंतराय लगाते हैं, तो वीर्यांतराय से दान तक, दानांतराय तक हीन हीन क्रम से यानी उल्टे क्रम से दिया जाता है। नाम में मोहिनी में कैसा जाता है, जो सर्वघाती है वो किस में जाएगा, मिथ्यात्व और सोला पशाय में, मिथ्यात्व में ज्यादा, फिर अनंत अनुबंधी लोभ यानी लोमा क्रोमा, लोभ माया क्रोध मान, अनंत अनुबंधी के बाद संज्वलन वैसा ही लोमा क्रोमा, फिर प्रत्याख्यान वरण, फिर अप्रत्याख्यान, नहीं पहले अनंत अनुबंधी फिर संज्वलन फिर प्रत्याख्यान वरण फिर अप्रत्याख्यान, ये तो सर्वघाती की बात है। जो देशघाती के द्रव्य है वो दो में विभाजित होता है, आधा संज्वलन को जाता है और आधा नौ कषाय को जाता है, संज्वलन में आधे से थोड़ा ज्यादा जाता है और नौ कषाय में आधे से थोड़ा कम जाता है। संज्वलन में जो जाता है वो सबसे ज्यादा लोभ में, फिर माया में, फिर क्रोध में, फिर मान में जाता है। नौ कषाय एट ए टाइम तो पांच ही बनते हैं, तीन में से कोई एक वेद बंधेगा और दो युगल में से कोई एक युगल बंधेगा और फिर भय जुगुप्सा बन जाएगी, तो उसमें वेद में सबसे ज्यादा जाता है, फिर रति या आरति जो बन रही है, फिर हास्य या शोक जो कुछ बन रहा है, और फिर भय में और बाद में जुगुप्सा में, ऐसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। वेदनी एट ए टाइम एक ही बनती है, तो जो है उसका माल पूरा एक जो बनने वाले में जाएगा, गोत्र भी एक ही बनता है, आयु भी एक ही बनता है, तो उसका अपना अपना द्रव्य उसमें पूरा जाएगा। नाम कर्म की बात थोड़ी अटपटी है, नाम कर्म में तो एट ए टाइम बहुत सारे प्रकृतियां बनती है, जो एक इंद्रिय अपर्याप्त का बंध हो रहा होगा तो वहां 23 प्रकृतियां बनती है, तो बंधने वाली में उल्टे क्रम से दिया जाता है। जैसे हम कैसे नाम कर्म की गिनते हैं, गति जाति शरीर वगैरह वगैरह, और लास्ट में निर्माण कहते हैं, तो निर्माण में सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर वो अयशस्कृति या यशस्कृति जो कुछ ऐसे उल्टे क्रम से। इन्हें यहाँ तो इतनी बातें विस्तार से नहीं की, उन्होंने इतना ही बताया कि इतने भागों में डिवाइड होता है, यानी ये बात आसान है। तो हमें ये देखना है कि जब मूल प्रकृति का बंध ज्यादा होगा तब उत्तर प्रकृति में भी ज्यादा माल आएगा, एक बात। दूसरी बात, स्पेशली नाम कर्म में, नाम कर्मों की कभी 23 प्रकृतियां बनती है जब एक इंद्रिय का अपर्याप्त का बंध कर रहा है, कभी 25 बनती है जब एक इंद्रिय का पर्याप्त का बंध हो रहा है या द्विंद्रिय आदि का अपर्याप्त का बंध हो रहा है। तो जहां मिनिमम प्रकृति बनती है वहां मैक्सिमम द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे तिर्यंच गति जो प्रकृति है, उत्तर प्रकृति है, उसमें मैक्सिमम द्रव्य कब होगा कि जब 23 वाला प्रकृति का बंध हो रहा है, यानी एकेंद्रीय अपर्याप्त संबंधी कोई जीव बंद कर रहा है, परंतु उसमें उत्कृष्ट योग होगा तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध होगा। उत्कृष्ट योग किसके हो गए, संगी पंचेंद्रिय जीव के होगा पर्याप्त के। तो जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव, अभी देव और नारकी तो एकेंद्रीय का बंध अपर्याप्त का करेंगे नहीं, इसलिए जो मनुष्य और तिर्यंच है, तिर्यंच में भी संगी पंचेंद्रिय है, और जो उत्कृष्ट योग में स्थित है वह जो उत्कृष्ट प्रदेश बंद करेगा, अपर्याप्त का नहीं करते, एक इंद्रिय का करेगा, पर्याप्त का करेगा, तो 23 वाला स्थान देवों के भी नहीं होगा। ये हमने अभी स्वामित्व नहीं देखा है, उसके पहले हम चर्चा कर रहे हैं। रूल इतना ही देखना है कि जहां कम से कम प्रकृतियां बनती है और योग ज्यादा से ज्यादा है तब उसके प्रदेश बंध उत्कृष्ट होगा, ये रूल है अभी तक। अब यहाँ हम ये सादी अनादि आदि प्ररूपणाएं देख रहे थे, पहले स्थान प्ररूपना हुई जो योग स्थान और प्रदेश बंध स्थान जैसे मूल में है उससे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फिर सर्व नो सर्व बंध यानी जहाँ उत्कृष्ट बंध हो रहा है वहां कहेंगे सर्व बंध हो रहा है, जहाँ उत्कृष्ट बंध नहीं है वहां कहेंगे नो सर्व बंध है। अब कल हमने 91 पेज पर सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव की बात की थी, उसका विशेषांक पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। देखो मूल में कही गई ध्रुव बंदिनी पांच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध गुण प्रतिपन्न जीवन के होता है। देखो इसका अर्थ देखते हैं। हमने देखा था ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध, आपको याद होगा, बहुत दिन हो गए ना, कहाँ होता है, मूल प्रकृतियों में देखना है। जहाँ आठ प्रकृति बंधी तब होगा कि सात होगा तब होगा कि छह बंधेगी तब होगा, जितनी कम प्रकृति उसमें माल ज्यादा, कम बच्चे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना धन। हाँ, तो जहाँ छह ही कर्म प्रकृति बनती है मूल की, वहाँ ज्ञानावरण में द्रव्य ज्यादा आएगा और उत्कृष्ट योग की कंडीशन तो है ही। तो ये छह ही प्रकृति कहाँ बनती है, तो दसवें गुणस्थान में बनती है, और वो ध्रुव बंदी नहीं है, पहले गुणस्थान से दसवें तक बन रही है। तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध गुण प्रतिपन्न, गुण प्रतिपन्न ने गुणस्थान प्रतिपन्न ने, यहाँ तो दसवें गुणस्थान में, ये मिथ्या दृष्टिकोण नहीं है, बस इतनी बात बताएं। उससे पहले उनका अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, जब तक दसवें गुणस्थान को कोई प्राप्त नहीं हुआ है, उपशम समय, उपशम श्रेणी हो या क्षपक श्रेणी हो, दसवें में उसका उत्कृष्ट प्रदेश बंध हो सकता है। इसलिए उसके पहले क्या था, तो अनुत्कृष्ट था, यानी अनादि से वो अनुत्कृष्ट था। अब कोई उत्कृष्ट करके दसवें गुणस्थान में ही, उत्कृष्ट योग तो थ्रू आउट दसवें गुणस्थान में नहीं होता, उत्कृष्ट के बाद उसने अनुत्कृष्ट किया, तो उसको क्या कहेंगे, साधि कहेंगे। यानी ज्ञानावरण में अनुत्कृष्ट का बंध तो अनादि से था ही था, अनुत्कृष्ट का अनादि से था, उत्कृष्ट कब हुआ, दसवें में हुआ, फिर उसके उत्कृष्ट होने के बाद फिर अनुत्कृष्ट होगा तो शादी भी होगा, वो अनादि भी है और शादी भी है। और अभव्य में तो ध्रुव बंध चलेगा, उसका अनुत्कृष्ट का ध्रुव बंध करे चलेगा, उत्कृष्ट का कभी ध्रुव बंध नहीं होगा, उत्कृष्ट का तो अध्रुव ही होगा। उत्कृष्ट बंध ध्रुव ने हमेशा उत्कृष्ट उत्कृष्ट ऐसे संभव ही नहीं, एक या दो समय तक होता है, तो उसको कहीं उत्कृष्ट बंध अध्रुव है, प्रकृति बंध अध्रुव है या ध्रुव है उसकी बात नहीं चल रही, उत्कृष्ट प्रदेश बन रहा है वो तो अध्रुव है। अब जगन्य की बात करेंगे, ज्ञानावरण का जगन्य बंध कब होता है, तो वो निगोद सूक्ष्म लब्ध पर पहले समय जन्म का, जहां उपाधि योग होता है, तो वो क्या ध्रुव है क्या, नहीं, जगन्य भी हमेशा नहीं होगा, तो क्या जगन्य अनादि से है, नहीं अनादि से भी नहीं है, क्योंकि अजगन्य 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 जगन्य होता रहता, इसलिए वो शादी है, तो शादी भी है और अध्रुव भी है। अजगन्य के लिए उसको भी कहेंगे, वो भी शादी है, जगन्य के बाद होगा तो वो भी शादी हो गया, और वो भी अध्रुव है, हमेशा तो अजगन्य नहीं होगा, कभी जगन्य भी हो जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ बताई है। तो विशेषार्थ में हम देखे थे कि ज्ञानावरणादि जो प्रकृतियां हैं, उसमें उत्कृष्ट प्रदेश बंध गुण प्रतिपन्न जीव यानी दसवें गुणस्थान में होता है उनके लिए। हर प्रकृति में ऐसा नहीं है। अभी ऊपर की लिस्ट देखो, पांच ज्ञानावरण है और छह दर्शनावरण है, छह दर्शनावरण में से चार दर्शनावरण का यानी दर्शनावरण का वो उत्कृष्ट बंध तो दसवें में होगा, उत्कृष्ट योग के जब होगा तब, परंतु दूसरी दो कौन सी, निद्रा प्रचलन, और यहाँ क्या लिखा, गुण प्रतिपन्न जीव यानी गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में होता है, तो उसके बंध विच्युति होती है ना, कहाँ होती है, आठवें के पहले भाग, आठवें के पहले भाग में निद्रा प्रचला की बंध विच्युति होती है, तो उसके बाद वो शादी भी हो जाएगा, उसके बाद जब बंधेगा तब, इसलिए उसको शादी में ले लिया, यानी अनुत्कृष्ट भी वहां उसका शादी हो सकता। यानी जहां नौ बनती है उसकी अपेक्षा जहां छह बंधेगी तब उसका निद्रा प्रचला का उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट योग के साथ, और उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होगा तो उसको शादी कहेंगे, इसलिए उसको गुणस्थान प्रतिपन्न लिया। छह कर्मों का यानी छह दर्शनावरण के छह है, तो नौ कहां तक बनते, पहले दूसरे गुणस्थान में, और छह का बंध तीसरे से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में, आठवें के पहले भाग, तो जहां तक बंद, जहां बंदी है ना ये छह ही, कहीं पर भी उत्कृष्ट योग के साथ उसका उत्कृष्ट हो सकता है। और उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होगा तो वो सादी होगा। यही बात यहाँ कहते हैं नीचे अभियाना, कि जो उत्कृष्ट नहीं हुआ था उसके पहले अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद होता है। सेकंड लाइन हो गई, तीसरी लाइन विशेषार्थ की। इसलिए तो इन प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद अनादि है, यानी जब तक मिथ्यात्व में था तो ये छह दर्शनावरण का अनुत्कृष्ट हो रहा था। उत्कृष्ट तो सम्यक्त्व के बाद होगा उसका, निद्रा प्रज्ञा का, और अन्य चार का तो दसवें गुण से। नहीं, वो तो उसकी बंध विच्छित्ति के जगह वहाँ स्थिति बंध अनुभाग बंद की बात है, यहाँ प्रदेश बंध में योग लगाना बस। छह कहाँ तक बनती है? तीसरे से लेकर आठवें तक। कहीं पर भी उत्कृष्ट योग में उसका उत्कृष्ट होगा। तो अनादि से क्या था तब? अनुत्कृष्ट था, और इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट के बाद पुनः अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद संभव है। यानी अनुत्कृष्ट के लिए वो नीचे के गुणस्थान में नहीं रहना, उसी गुणस्थान में उत्कृष्ट योग नहीं था तो अनुत्कृष्ट योग के साथ अनुत्कृष्ट बंद हुआ। इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद सादी है, ये अनादि भी है और सादी भी, हो गए ना। तथा भव्यों की अपेक्षा वह अध्रुव है, अध्रुव यानी कॉन्स्टेंट नहीं है, और अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव है। यानी जो अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद है, अभव्य हमेशा अनुत्कृष्ट ही करेंगे, क्योंकि वो तो ऊपर गुणस्थानों में आरोहण नहीं, यानी सम्य दृष्टि भी नहीं होने वाली, तो नौका नौका बंद चलेगा उनका। तो जो ऊपर के गुणस्थानों में उत्कृष्ट होता था करेंगे नहीं, उनके अनुत्कृष्ट है, इसलिए उनमें ध्रुव होगा। अनुत्कृष्ट बंद ध्रुव है, हमेशा अनुत्कृष्ट ही होगा, क्योंकि वो कभी समय दृष्टि नहीं होगी। यहाँ तक बात ख्याल में? उनके तो अध्रुव, उनका तो चल रहा है, परंतु वो आगे कभी जाके करे ही नहीं, इसलिए उसको ध्रुव कहा। परंतु वो आगे चलकर ऊपर कर सकते हैं, इसलिए उसको अध्रुव कहेंगे। भव्य में वो अध्रुव कहने की पद्धति, कुछ भव्य ऐसे भी होंगे ना वो नित्य निगोद में पड़े रहेंगे, उसकी बात नहीं लेनी है। भव्यों में वो अध्रुव है, इसलिए कहा कि उसमें वो योग्यता पड़ी है, हाँ, कि बंध ही रुक जावे। इस प्रकार पांच ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध के सादी आदि चारों विकल्प बन जाते। सादी आदि में तेजल कौन कौन से है? सादी आदि में नहीं, सादी के साथ दूसरा शब्द कौन सा है? अनादि। अनुत्कृष्ट की बात चल रही है, सादी भी है अनादि भी है। सादी कब उत्कृष्ट के बाद होगा? अनुत्कृष्ट तो सादी है, अन्यथा अनादि से मिथ्या दृष्टि को तो अनुत्कृष्ट चल ही रहा है। अभव्य में कहेंगे अनुत्कृष्ट ही चलता रहेगा, तो वो क्या है? ध्रुव है। और भव्य में जब समय तो प्राप्त करेंगे तो उत्कृष्ट भी होगा अनुत्कृष्ट भी होगा, उनमें अध्रुव है, कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट होगा। तो अनुत्कृष्ट में चारों विकल्प बन जाते हैं, किंतु इनके इनके नहीं, वो क्या अनादि के उत्कृष्ट। अभी उत्कृष्ट में अनादि से तो नहीं कह सकते, सादी हो जाएगी, और उत्कृष्ट सादी है तो उत्कृष्ट किसके होगा? तो भव्य के होगा, इसलिए वो अध्रुव है। जघन्य, अब जघन्य के लिए तो कुछ गुणस्थान की बात नहीं थी, परंतु वो तो निगोद के वो पहले समय में होता है, सूक्ष्म पर्याप्तम के पहले समय में, इसलिए उसके लिए वो सादी कहेंगे और अध्रुव कहेंगे, क्योंकि हमेशा जघन्य तो नहीं रहे। जैसे अनुत्कृष्ट अनादि से चलता आया था, वैसे जघन्य या अजघन्य अनादि से तो नहीं चल रहा है, वो तो पलटते रहता है, कभी जघन्य कभी अजघन्य। जब वो निगोद की जघन्य योग में चला जाएगा पहला उपपाद, तब उसका जघन्य होगा, अन्यथा अजघन्य। तो जघन्य अजघन्य कैसे सादी और अध्रुव है? तो कहते उत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य बंध के ये चारों विकल्प न होकर केवल सादी और अध्रुव ये दो ही विकल्प होते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रकार के बंध कौन से उत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य कादाचित को होते हैं, कभी कभी होते हैं। इनके सिवा, अभी पहले इनके सिवा अन्य प्रकृतियों की बात उठाने के पहले हमने फिर उस लिस्ट में चले जाएंगे ऊपर के। हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण को लिया था, बारह किसमें उत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य में सादी और अध्रुव ये दो ही विकल्प होते हैं। तीनों के लिए
ये तीनों प्रकार के बंध कादाचित होते हैं, कौन से बताया?
उत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य। अनुत्कृष्ट हमेशा था, क्योंकि उत्कृष्ट की अपेक्षा उसको अनुत्कृष्ट कहां था। इसलिए साधी और अध्रुव हो गए। अभी अन्य जो प्रकृतियां ऊपर की कल हमने देखी थी, फिर भी देख लेते हैं। 171 पॉइंट की सेकंड लाइन, पांच ज्ञानावर की अभी हमने देख ली, छह दर्शनावरण की भी बात हो गई है। अब 12 कषाय, जहां 16 कषाय और मिथ्या तो बन रहे हैं, तो 17 में विभाजित हो रहा था। अब ये कैसा जीव लेना जहां 12 कषाय बनते हैं, यानी वो गुणस्थान प्रतिपन्न जीव है ना, तो उसमें चौथे गुणस्थान वाले का 12 का उत्कृष्ट हो सकता है, जब उत्कृष्ट योग है। पांचवे गुणस्थान वाले का 8 का उत्कृष्ट हो सकता है, प्रत्याख्यान और संज्वलन दो बन जाएंगे। और जो मुनिराज है और वो भी नौवे गुणस्थान में, जब वेद का भी बंध मिट जाता है, अकेले संज्वलन बनता है, तब संज्वलन का उत्कृष्ट होगा। इसलिए इनमें भी जो उत्कृष्ट है उसके आदि होगी सादी है, और उत्कृष्ट हमेशा नहीं रहता इसलिए अध्रुव। उसके पहले क्या था? अनुत्कृष्ट था। उत्कृष्ट के बाद होगा तो अनुत्कृष्ट की भी सादी कहेंगे। तो अनुत्कृष्ट के चार विकल्प होंगे, सादी अनादि था, अनादि सादी ध्रुव और अध्रुव। ये 12 कषाय की बात हो गई। भय जुगुप्सा, ये भय जुगुप्सा तो मोनी की है ना, तो वहां ऐसा कि जहां मोनी की सभी प्रकृतियां बनती है तो वहां उसमें कम माल मिलता है, तो ऊपर के गुणस्थानों में यहां केवल संज्वलन रह गया है। और ये भी नौ कषाय भी बंद रहे हैं, इनकी बंद विच्छित्ति कहाँ है? आठवें में है, लास्ट में। और संज्वलन और ये नौ कषाय बंद रहे, तो मुनिराज है तो संज्वलन में भी जाएगा माल और इनमें भी चला जाएगा। तो यहाँ भय का और जुगुप्सा का ये अलग अलग लेना, उसमें ज्यादा माल आ जाएगा। और नीचे के गुणस्थानों में तब तक क्या था? अनुत्कृष्ट था। तो उत्कृष्ट क्या होगा? सादी होगा। और उत्कृष्ट हमेशा नहीं रहता तो अध्रुव होगा। ख्याल में आई ना बात? यहाँ ऐसा लेना कि वो बनती है, पहले गुणस्थान वाले के भी बनती है और ऊपर के गुणस्थानों में भी बनती है, पर जहां मोहनीय की उत्तर प्रकृतियों की संख्या कम होगी उसके लिए कहां कितने बनते हैं वो हमें याद होना चाहिए। आप बताएंगे मोहनीय के बंध स्थान गुणस्थानों की अपेक्षा? हमने मुच्छित्ति कहाँ पूछा, हमने बंध स्थान पूछा। बंध स्थान का अर्थ समझते हैं? अभी हमने नाम कर्म के बंध स्थान कैसे देखा है, 23 वाला बंध है, 25 वाला बंध है, 26 वाला है, 28 वाला है, 29 वाला है, 30 वाला है, 31 वाला है, 1 वाला है, नाम कर्म के बंध स्थान। हमें मोनी के बंध स्थान चाहिए
24 का।
मिथ्या तो में 22 का बंध होता है, कैसे? एक मिथ्या तो 16 कषाय, 17 हुए, भय जुगुप्सा 19 हुए, ये तो ध्रुवबंदी है, 19 हो गए ना। अब उसमें से एक युगल बंधेगा और एक वेद बंधेगा, 19 और 3 22 होते हैं। तो 22 प्रकृतियां बनती ही है, उसमें ऑप्शनल होगी। ऑप्शनल कैसे हो गए? हास्यरति बंधेगी या अरतिशोक बंधेगा, वेद में से कोई एक बंधेगा, परंतु 22 नंबर 22 वहां कांस्टेंट होगा, 22 का बंध होगा। मैंने हार्ट पेन में नहीं कहा,
वो तो पहले पुरस्कार से पे भी होगा
हसीरती का ना, जहाँ कम प्रकृतियाँ बनती, इसीलिए मैंने बंद स्थान पूछा।
नहीं वो तो मैं बता देता हूँ, 22, 17, 13।
देखो 22 के बाद 21, दूसरे गुणस्थान में 21 का बंध होता है, मिथ्यात्व का बंध नहीं है। तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी भी नहीं बंधेगी, तो 17 हो गए। चौथे में भी 17 ही है, तीसरे में भी और चौथे में भी, फिर 5 कषाय और 5 गुणस्थान में, पांचवे में और 4 कम हो गए, फिर 13 हो गए, फिर छठे सातवें और ऊपर में
9 हो गए।
अभी 9 हो गए, 9 में क्या हो रहा है, संज्वलन 4 बन रहे और 9 कषाय 5 बन रहे, 5 यानी पुरुष वेदी बन रहा है, और फिर हास्यरति या शोकरति एक युगल बन रहा है, भय जुगुप्सा बन रहे, तो 9 का बंध स्थान कहे, 9 के बंध के स्थान और ऊपर चढ़ा, यानी 5 का बंध स्थान 5। परंतु जो हमने देखा ना यहाँ पर रति शोक के बंधे विच्छित्ति होने के बाद भी 5 तो बंधेगी, हास्य रति बन रही है, यानी बंधे विच्छित्ति के बाद भी वो नौकशाय 5 ही बन रहे, कब तक बंधेगी 5 नौकशाय और यहाँ संज्वलन 4 बन गए, 9वां का स्थान है, 9वें के स्थान में जाके डायरेक्ट 9वें गुणस्थान के पहले भाग में 1 वेद बंधेगा और 4 संज्वलन बंधेगा। एक से 9 कैसे होगा, वह 1 में 22 में विभाजित हो रहा है,
जितने कम
और 8वें गुणस्थान में
कषाय और 9 कषाय में आता और आता जाता है, तो 5 9 कषाय भी 8वें गुणस्थान तक बनता है, 1 से 8 तक कहाँ वृद्धि बन सकता है, खाली पुरुष वेद का।
हाँ, परंतु सर्वघाती का भी जाएगा कि नहीं, यानी आप केवल उसमें भी नौकषाय की बात कर रहे हैं।
हाँ, मैं नौकषाय की बात कर रहा हूँ, नौकषाय का उत्कृष्ट 1 से जो उसमें खाली वेद छोड़ के आशीर्वती और आरती शोक का
जहाँ तक 5 नौकषाय बन रहे वहाँ
तक
अभी हम देखेंगे बराबर है कि नहीं। स्वामित्व में, स्वामित्व में देखेंगे, जब स्वामित्व का प्रकरण आएगा उसमें कन्फर्म करेंगे। तो ये हो गए, ऊपर हमने बैजुगुप सा 5 अंतर है, मोनी के बंदर 9 के बाद हमने 5 देखे, 5 के बाद वेद का बंदर रुक गया तो 4 का हो गया, क्रोध रुक गया 3 का हुआ, मान रुक गया 2 का हुआ, माया का रुक गया 1 लोक का बंदस, यानी बंदसन कैसे 22, 21, 17, 13 के बाद 9 फिर 5 4 3 2 और 1 मोहनी के बंद स्थान। यानी देशघाती हमने संज्वलन में कषाय नौकषाय में डिफरेंस किया था, उसकी अपेक्षा नौकषाय की बात कर रहे हैं, वो देखेंगे हम स्वामित्व में। अभी यहाँ देख रहे हैं, हमने सभी प्रकृतियां देखी, 5 अंतराय का भी उत्कृष्ट कहाँ देखा हमने, 10वें में हो सकता है, वहां पर भी यही बात, यही रूल लागू हो जाता है। यहाँ तो बात ख्याल में आई। अब नीचे से चौथी लाइन लास्ट में विशेषांत की, इनके सिवा अन्य जितनी प्रकृतियां हैं उनके उत्कृष्ट आदि चारों पद कादाचित को होने से, इसका अर्थ क्या है, जो उत्कृष्ट बंध जहां कम प्रकृतियां बनती ऊपर के गुणस्थानों में, उनमें तो जो ऊपर के रूल है वो देखे, और जो प्रकृतियां उत्कृष्ट आदि चारों पद यानी नीचे के गुणस्थान में कभी उत्कृष्ट हुआ कभी अनुत्कृष्ट हुआ ऐसे होता रहता है, तो उनमें चारों पद लागू। जैसे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब होगा, पहले गुण से कभी भी उत्कृष्ट, जहाँ योग ज्यादा है, संगी पंचेंद्रिय है, उसका उत्कृष्ट हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, तो उसको उत्कृष्ट के भी हम उसमें ये सभी पद लागू होते हैं, परंतु सभी पद गए कैसे, कभी कभी हो गए, यानी अनादि से उत्कृष्ट ऐसा नहीं कह सकेंगे, अनादि से अनुत्कृष्ट ऐसा भी नहीं कह सकेंगे, तो वो सादी हो गए। तो कहते कादाचित को होने से उनमें सादी और अध्रुव ये दो ही विकल्प बनते हैं। ऊपर हमने 12 कषाय देखे, तो अनंतानुबंधी में क्या विकल्प हो गए, सादी और अध्रुव, क्योंकि उसका उत्कृष्ट कभी कभी होगा, अनुत्कृष्ट अनादि से चल रहा है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मिथ्या तो गुणस्थान अनादि से है, कभी उत्कृष्ट है कभी अनुत्कृष्ट है, चलता रहता है, तो उसको कहेंगे सादी है और अध्रुव है। ये ऊपर जो जो प्रकृति हमने छोड़ी थी ना, 6 दर्शनावरण लिए थे, स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला का नीचे के गुणस्थान, जब योग ज्यादा है तो उसका उत्कृष्ट भी बंद होगा। भय जुगुप्सा को यहाँ लिया, बाकी प्रकृतियों को नीचे के गुणस्थान भी उसका उत्कृष्ट होगा। ये ध्रुवबंदी है ना, इसलिए उसको लिया। हास्यरति में ये बात नहीं लागू होगी और अतिशोक में भी नहीं लागू होगी, क्योंकि उसका बंद ही नहीं होगा बीच बीच में, वो अल्टरनेटली बनती है, इसलिए उसमें लागू नहीं किया। हाँ, ये ध्रुवबंदिनी को पहले ले गए। क्योंकि जिनका बंद ही रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, उसमें तो ये कैसे उसको हम अनादि है या ऐसा तो नहीं कह सकते, वो तो रख जाएगी बीच बीच में। यानी ऐसी प्रकृतियां ली जो ध्रुवबंदी और ऊपर के गुणस्थानों में बंद विच्छित होती है, ऐसे लिए। यह ओघ प्ररूपणा है, अभी जो हमने ऊपर से पूरी देखी, जो अचक्षु दर्शनी और भव्य मार्गणा में संभव है, क्योंकि वे ही जीव ऊपर के गुणस्थानों में भी पाए जाते हैं और मिथ्यात्व में भी पाए जाते हैं, इसलिए इन दो मार्गणाओं में ओघ के समान उक्त प्ररूपणा जानने की सूचना की है। मात्र भव्य मार्गणा में 5 ज्ञानावरणादि के अनुत्कृष्ट पद का ध्रुव भंग नहीं बनता, यानी जहां भव्य कहेंगे तो वहां वो उसको ध्रुव नहीं कहेंगे, क्योंकि भव्य होने से इनके सब प्रकार का बंध अध्रुव ही होता है, क्योंकि बंध रुक कर वो तो अबंध हो जाने वाले, मोक्ष जाने वाले। शेष सब मार्गणाएं कादाचित कहे, कादाचित यानी मार्गणा ही कादाचित कहे, यानी मार्गणा अनादि से नहीं हो सकती है, ये अचक्षु दर्शन ये तो अनादि से है जी, तब तक अचक्षु दर्शन ही रहेगा। अचक्षु दर्शन अनादि से कब तक रहेगा, जब तक केवल दर्शन नहीं होगा, वहां तो अन्य दर्शन है नहीं ना। देखो चक्षु के साथ अचक्षु तो रहता ही है, अवधि दर्शन के साथ भी अचक्षु दर्शन तो चलता ही रहेगा, क्योंकि संगी पंचेंद्रियों के होगा अवधि दर्शन, तो उसके चक्षु अचक्षु तो है ही है उसके साथ, 12वें तक है, इसलिए उनमें ये पूरी प्ररूपणा बन जाती है। बाकी मार्गणा कैसी, कादाचित कहे, यानी कोई भी ले लो, कोई मनोयोग ले लो, काय योग ले लो, यानी वो अल्टरनेटली होते हैं ना, योग पलटते, कुछ काल के लिए रहेंगे, काय योग भी कंटिन्यूअस काय योग रहना है तो भले अनंत काल तक एक केंद्र में रहा, काय योग रहा, फिर भी वो पलट तो जाएगा, इसलिए उसको कहा कादाचित। यानी वो तो उसकी लिमिट है टाइम की, इसलिए उनमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट आदि पद कादाचित को होने से सादी और अध्रुव कहे गए। ये थोड़ा बहुत गहन विषय है, कल हमारा हुआ था इसलिए आज हमें जरा आसान लगा है। अब ये उत्तर प्रकृति प्रदेश बंध में हमने 11 तक के अनुयोग द्वार देखे, पहला स्थान प्ररूपना था, फिर सर्व नौ सर्व उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य हुए थे 7 तक, फिर शादि अनादि ध्रुव और अध्रुव 8 से 11 हो गए। अब इसको नंबर 12 देंगे, ये उत्तर प्रकृति प्रदेश बंद नंबर 12 स्वामित्व प्ररूपण। अभी स्वामित्व पढ़ने के बाद और क्लैरिटी हो जाएगी, हमने तो पढ़ा नहीं था, हमने अपने से ये सब डिराइव किया। स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 7 विधि यशस कीर्ति उच्च गोत्र और 5 अंतराय के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। अभी ये आसान है ना, क्योंकि 6 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, 6 प्रकार यानी 6 मूल प्रकृति, 10 विभिन्न स्थान, उसमें भी कंडीशन है उत्कृष्ट योग से युक्त और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित। अन्यतर उपशामक और क्षपक, उपशामक योग क्षपक में योग की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, विशुद्धि की अपेक्षा भले अंतर हो, जीव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यानी ये सूक्ष्म सांप्राय वाला जीव उत्कृष्ट योग वाला लिया। स्त्यान वृद्धि 3, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी 4, स्त्री वेद नपुसक वेद। जब हम प्रकृति पढ़ रहे तो हम इमेजिन करना ये कि इनमें एक रूप में लिया है तो ये तो नीचे के गुणस्थानों में बनने वाली है, और नीच गोत्र के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। कहते सब पर्याप्तियों से पर्याप्त 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, क्योंकि 8 का करेगा तो वो और डिस्ट्रीब्यूट होगा। उत्कृष्ट योग से युक्त और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में वर्तमान, अन्यतर 4 गति का पंचेंद्रिय संगी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। देखो स्त्यान वृद्धि अनंतानुबंधी तो दूसरे में भी बनती है, श्रीवेद भी बनता है, परंतु स्वामी में पहले गुणस्थान वाला जीव दिया है मिथ्या दृष्टि। फिर भी दूसरे को नहीं लिया, यही कहना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि वो अनंतवा भाग में वो डिफरेंस पड़ता है। हाँ अभी पता नहीं क्या, परंतु मिथ्या दृष्टि को लिया।
बराबर,
तो मूल मूल। हाँ जब आयु का बंध होता है तो 8 में विभाजन होगा, तो हर एक हिस्से में कम ना आएगा। निद्रा प्रचला, हास्यरति अरतिशोक और भय जुगुप्सा के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित, अन्यतर 4 गति का सम्य दृष्टि जीव, ये केवल सम्य दृष्टि इतना ही लिया उसने, उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। देखो यहाँ पहले गुणस्थान से 8वें तक नहीं लिया, सम्य दृष्टि को। हाँ अभी अरतिशोक में तो 4 से 6 लेना पड़ेगा। हाँ। चार गति का समय दृष्टि है। हाँ भाई तो चौथे से ऊपर ले सकते हैं, असंयत नहीं कहा, समय दृष्टि लिया, बस इतना ही लिया। क्योंकि योग तो कहीं पर गुणस्थानों के अनुसार योग पलटना का नहीं होता, उत्कृष्ट योग कहीं पर किसी भी गुणस्थान में हो सकता है, योग स्थान जो है सभी गुण। केवल यहाँ क्या देखना है कि यहाँ प्रकृतियां बनती है, नीचे के गुण स्थान वाली नहीं बनेगी, इस अपेक्षा से ले लेना। निद्रा प्रचला क्यों? क्योंकि नीचे के गुणस्थान में 9 प्रकृतियां बन रही थी, अब यहाँ 6 बन देगी। असाता वेदनीय के उत्कृष्ट प्रदेश गंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में वर्तमान, अन्यतर 4 गति का संगी, सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के, असाता वेदनी के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यानी जब तक असाता वेदनी बनती है तब तक कहीं पर भी उसका उत्कृष्ट योग होगा और आयु नहीं बांध रहा है, तो 7 में विभाजन होगा और वेदनीय का जो माल है वो पूरा का पूरा असाता बन रहे तो असाता में आएगा। अप्रत्याख्यानावरण 4 के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में वर्तमान, अन्यतर 4 गति का असंयत समय दृष्टि। क्योंकि ऊपर की जीव तो उसको बांधेगी नहीं और नीचे के गुण स्थानों में बांध तो रहे हैं, परंतु माल तो मिथ्या तो अनंत अनुबंधी में भी जाएगा। तो अप्रत्याख्यानावरण 4 के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है।
पांचवे गुणस्थान के ऊपर नहीं लेना चाहिए, सर्वगाति का बंध होगा।
क्या क्या फिर
सर्वगाति स्पर्धकों का बंध हमने देखा था, पांचवे गुणस्थान के ऊपर 20 स्थान यह बंद होता है, तो वहां पे भी सर्वगाति स्पर्धक बनते हैं।
बंध की बात कह रहे कि उदय की बात?
बंध का पूछ रहा
है। तो उसका यहाँ क्या प्रश्न आया?
क्योंकि सर्वगाति का द्रव्य हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे
तो देशगाति में चला जाएगा, उसमें क्या? अभी यहाँ प्रत्याख्यानावरण 4 के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? तो अभी आसान है ना, जो प्रत्याख्यान और संज्वलन दो ही प्रकार के, तो 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में वर्तमान, अन्यतर 2 गति का संयता संयत जीव, प्रत्याख्यानावरण 4 के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अब यहाँ पर्याप्ति से पर्याप्त होने वाला कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सारे पर्याप्त होने पर ही संयता संयत गुणस्थान प्राप्त होता है। क्रोध संज्वलन के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? मोहनीय कर्म की 4 प्रकृतियों का बंध करने वाला, यानी अपगत वेदी हुआ है और क्रोधमान माया लोग चारों बन रहे हैं, यानी क्रोध वेदक काल जो है ना वहां का, और उत्कृष्ट योग से युक्त, अन्यतर अनिवृत्तिकरण उपशामक और क्षपक जीव, क्रोध संज्वलन के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ये भी समझने में आसान हो रहा है, तो हमने सारे बंध स्थान देखे इसलिए तो आसान हुआ। इसी प्रकार मान माया और लोभ संज्वलन की अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए। वहां कैसे कहेंगे हम कि मोहिनी की 3 प्रकृतियों को बांधने वाला मान का उत्कृष्ट करेगा? मोहिनी की 2 ही प्रकृति, यानी 2 प्रकृति का जो बंध स्थान है माया और लोभ बांध रहा है, वहां माया का उत्कृष्ट होगा। और 9वें के अंत में जो लोभ वेदक काल है वहां अकेले लोभ का बंध हो रहा है, तो वो लोभ का और उसमें उत्कृष्ट योग की कंडीशन लगाना, यानी उसके वेदक काल में पूरे के पूरा उत्कृष्ट योग नहीं होगा, कभी कभी होगा। यहां लिखा ना, इतनी विशेषता है कि जो मोनी की तीन प्रकृतियों का, दो प्रकृतियों का और एक प्रकृति का बंध करता है और उत्कृष्ट योग से युक्त है, वह क्रम से इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इन तीन प्रकृतियों का बंध करने वाला मान का उत्कृष्ट का हो सकता है जब उत्कृष्ट योग है, दो प्रकृति का बंध करने वाला माया का उत्कृष्ट करेगा, एक का तो सारा लोभ ही चला जाएगा, पूरा समय प्रबद्ध मोनी का लोभ रूप से बंध रहा है, वहां तो सात ही प्रकृतियां बंध रही है, आयु तो वहां बनती नहीं है, तो पूरा वन सेवन पूरे समय प्रबद्ध का वो सारा का सारा लोभ रूप से बंध रहा है। इसी प्रकार पुरुष वेद की अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि जो मोनी कर्म की पांच प्रकृतियों का बंध कर रहा है, छठे सातवें में कितनी प्रकृतियों का बंध करता था?
नौ।
आठवें में?
आठवें के अंत पे चार थे,
नौवे के शुरुआत में पांच का बंध स्थान है। और उत्कृष्ट योग से युक्त है वह पुरुष वेद के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है, इन्हें नौवे गुण स्थान की पहला भाग। यानी वो सवेद है ना, तब वो वेद का बंध कर रहा है, यानी मोहनीय का पूरा द्रव्य चार संज्वलन और एक वेद में जा रहा है, पांच में ही डिवाइड हो रहा है, यानी आधा संज्वलन में और आधा एक पुरुष वेद में, तो वहां उसका मैक्सिमम है। नरकायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, अभी आयु की बात है तो आठ प्रकार का कर्म बन रहा है उसमें, और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यथा दो गति का संगी मिथ्या दृष्टि जीव। देखो क्या क्या कंडीशन लगाई, एक तो नरकायु का बंध कौन करते, तो मनुष्य और तिर्यंश ही करते, और वो आयु का बंध कब होता है? पर्याप्त होने पर ही होगा, अपर्याप्त जो तो नरकायु का बंध ही नहीं करेंगे। अब जब आयु का बंध हो रहे तो आठ प्रकार के कर्म बने मूल प्रकृति। अब नरकायु का बंध संगी भी करते हैं असंगी भी करते हैं, पर असंगी से संगी का योग ज्यादा है, असंख्यात गुना है, इसलिए संगी वाली कंडीशन डाली। और मनुष्य तिरंची करते इसलिए दो गति का संगी और मिथ्या दृष्टि जी, क्योंकि नरकायु का बंध तो मिथ्या दृष्टि के ही होता है, आगे वाले गुण स्थानों के नहीं होता। इतनी सारी कंडीशन डाली, नरकायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। तिर्यंचायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? ये सब पर्याप्तियों से पर्याप्त आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर चार गति का संगी मिथ्या दृष्टि जीव। तिर्यंचायु की बात चल रही, गति की नहीं, तिर्यंचायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यहाँ आयु ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रदेश बंध, ऐसा नहीं है, नहीं तो तीन पल्ले वाली कहना पड़ता ना, तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच ही मानते उसको, यहाँ चारों गति के जीव लिए। अनुभाग बंध में हम ज्यादा स्थिति बांधने वाले का ज्यादा अनुभाग देखा है, तीर बल्ले वाले के लिए उसका अनुभाग ज्यादा था, यहाँ योग की बात है, उत्कृष्ट योग है बस इतना है। तो तिर्यंचायु का उत्कृष्ट जो प्रदेश बंध है कौन करते, तो संगी पंचेंद्रिय करते, और ये हम नेचुरली मिथ्या दृष्टि जीव ले लिया। मनुष्यायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर चार गति का संगी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि है। क्योंकि मनुष्य है तो मिथ्या दृष्टि भी बांध सकते, समय दृष्टि भी बांध सकते, उत्कृष्ट योग चाहिए और पर्याप्त जीव चाहिए, आठ प्रकार का बंध कर रहे हैं। मनुष्यायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है।
मनुष्य के आयु के साथ भी उत्कृष्ट आयु बंध का स्वामी हो सकता है, संगी बंध तो कर सकता है जो मनुष्य की लब्धियां पर्याप्त।
कौन सी आयु बांध रही है इसका यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, प्रदेश बंध कब कितना कर रहा है उसकी बात है, कौन कर रहा है उसकी चर्चा चल रही है। देवायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जिसे नरक भी मैं देखा था, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग से युक्त, अन्यतर दो गति का संगी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, जो नरकायु में अकेला मिथ्या दृष्टि लिया था वो नरकायु तो मिथ्या दृष्टि बांधता, परंतु यहाँ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही देवायु को बांधेंगे। संगी को लिया क्योंकि उसका योग ज्यादा बढ़ता, देवायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ये तो आयु की बात हो गई, अब नाम कर्म की बात चलेगी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म की 28 प्रकृतियों के साथ सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला। देखो जब नरक गति बनती है, कल हमने देखा था नाम कर्म के जो स्थान है, नरक गति बांधने वाले के 28 प्रकृतियां बनती है। कौन कौन सी? नौ तो ध्रुव बंदी, कौन सी ध्रुव बंदी होती है? तेजस कारमान वर्णादि चार, अगुर लघु उपगान और निर्मल। फिर नौ तो युगल में से होती है, यानी त्रसादि चार युगल और स्थिर अस्थिर वगैरह वो छह युगल। ये तो नियम से हर जीव को बनती है। स्वर तो इंद्रियादि जीव होंगे तो स्वर बनेगा, तो नरक गति के साथ तो दुस्वर भी बनेगा, यानी वो पहली नौ और ये दस, 19 हो गई। पांच भी हमेशा बनती है, उसमें से कोई ना कोई गति बनेगी, इसको कहेंगे पिंड में से कोई ना कोई बनेगी। एक गति होती है, एक जाति होती है, एक शरीर होता है, एक संस्थान होता है, एक अणुकुटी होती है। 19 और 5 23 24। अब ये नारकी नरक है, यानी नारकी जो कैसे पर्याप्त है, तो जो जो ये पर्याप्त जीव है उनके साथ और क्या बंधेगा? स्वर तो हमने ऑलरेडी ले लिया था, यहाँ परघात उच्छ्वास भी बंधेगा और विहाय गति भी बंधेगा। 19 और 3 22 हो जाएगा, हाँ ये सॉरी 19 5 24 किए थे और
27
27 और एक बढ़ गया ना अंगोपांग, वैकिरेक अंगोपांग विहाय गति बताई मैंने, परघात उच्छ्वास अंगोपांग और विहाय गति। इस तरह से 28 प्रकृतियों का बंध होता है। अब ये बार बार सुनोगे ना तो ख्याल में आएगा कहाँ क्यों कैसे लेना है, किसको लेना है। नहीं 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 उसकी बात नहीं, जरूर नहीं है। यहाँ केवल उसके साथ नरक गति के साथ अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर को ही लिया। हाँ कर्मकांड का बता देना, जो हमने कल बंध स्थान देखे ना, हाँ 491 कोई पेज पर था वो टेबल बनाए। तो देखो ये अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर यही लिए यहाँ पर, यहाँ दुर्भग अनादेय वगैरह उसको नहीं लिया यशस्कृति, क्योंकि वो तो सूक्ष्म जीव के साथ भी बंधेगी 23 के स्थान के साथ, तब उसका उत्कृष्ट हो सके, इसलिए इसको यहाँ पर लिया। ये एकेंद्री के साथ नहीं बनती है, तो नाम कर्म के 23 वाले के साथ 25 वाले के साथ ये नहीं बंधेगी, और लेस 28 वाले के साथ ये बन सकती है, बाद में भी बंधेगी। मनुष्य 3 इंच के 29 के 30 के साथ भी ये बन सकती है, परंतु तब उसके उसमें खाते में कम माल आएगा। तो देखो नाम कर्म की 28 प्रकृतियों के साथ सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग से युक्त दो गति का, क्योंकि नरक गति बांधने वाले मनुष्य और तीरंजे ही होते हैं। संगी पंचेंद्रिय, क्योंकि असंगी भले बांधेंगे परंतु उत्कृष्ट योग नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि जीव नरक गति उसी को बंधेगी। उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ये नाम कर्म के बंध स्थान जानना जरूरी है अभी से, क्योंकि ये नाम कर्म की जब जब प्रकृति आएगी तब तक हमें ऐसा ही सोचना है कि वो मिनिमम प्रकृति बांधती है तो मैक्सिमम द्रव्य उसमें आएगा। तो नाम कर्म के स्थान कौन कौन से देखे थे आप बताएंगे? 23 वाला, 25, 26, 28, 29, 30। 23 वाले ने एक इंद्रिय अपर्याप्त संबंधी बंद कर रहा। तो हमने देखे थे नव, तो ध्रुवबंदी देखे थे, नव युगल देखे, स्वर बिना वाले नव, नौ नौ 18 हो गए, पांच गति जाति वगैरह बनती है, वो 5, 18, 5, 23 मिनिमम उसके बनती है, क्योंकि वो पर्याप्त होते हैं तो उनकी ज्यादा बनती है, त्रस होते हैं तो उनकी ज्यादा बनती है, उसकी बात यहाँ नहीं लेंगे। ये मिनिमम वाला 23 वाला स्थान है, तो वहां क्या क्या बन रहा है? तीरंच गति बन रही है, एक इंद्रिय जाति बन रही है, स्थावर प्रकृति बन रही है, तो इनका मैक्सिमम यहाँ पर भी होगा जहाँ 23 वाला स्थान है। तो देखो, तीरंच गति, एक इंद्रिय जाति, औदारी शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर। अब यहाँ जो 23 प्रकृतियां बनते हैं उनका उत्कृष्ट बंध यहीं पर होगा। कुंड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी, अगुर लघु उपघात, दो ही लिए, यहाँ अपर्याप्त जीव है ना इसलिए, स्थावर, बादर या सूक्ष्म दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि बादर भी अपर्याप्त हो सकते हैं, सूक्ष्म भी अपर्याप्त हो सकते हैं, वो दोनों ही ऑप्शन यहाँ होंगे। अपर्याप्त लेना है, पर्याप्त लेते तो उच्छ्वास और उपघात बढ़ जाएंगे, तो यहाँ अपर्याप्त लिया। प्रत्येक साधारण दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। अस्थिर आदि 5, क्योंकि अपर्याप्त के साथ वो सभी अशुभ ही बंधेगी। और निर्माण के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अभी ये बांध रहा है 23 वाला स्थान, तो तेजल आपको विचार करना है, 23 वाले ने एक इंद्रिय के अपर्याप्त संबंधी बंध कर रहा है, तो वो कौन होगा? नारकी होगा कि देव होगा कि मन बंध करते ही नहीं? देव अपर्याप्त का करेंगे कि नहीं करेंगे? अपन नहीं करेंगे। कौन रहेगा? मनुष्य और तीरंज। अब उसमें मनुष्य तीरंज में उत्कृष्ट योग किसके होगा? संगी पंचमी के होगा ना। और वही हमने दे ना, मनुष्य तीरंज बोल दिया पहले, तो तीरंज हमें संगी पंचेंद्रिय कहना पड़ता है, मनुष्य तो संगी पंचेंद्रिय ही है। अब ये समय दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा? मिथ्या, क्योंकि अपर्याप्त का बंद करें ना, कंडीशन आ गई सभी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्वामी कौन है? ये प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेश बंद कितने का करा है? तो 23 वाला स्थान बांध रहा है, परंतु उसका जब उत्कृष्ट प्रदेश बंद कर रहा है तो ये कौन सा जीव होगा? तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म की 23 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला है। आयु के साथ वो नहीं बंद, बाद में यानी जब 7 प्रकार के कर्म बन गए, और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर 2 गति का पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि जीव, उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अभी एक आसान हुआ ना, क्योंकि इसके 23 प्रकृतियां बन रही है, तो ये 23 प्रकृतियों का बंध कौन कर सकते? मनुष्य तीरंज कर सकते हैं। हाँ, परंतु वो तो सूक्ष्म एक इंद्रिय बीज एक इंद्रिय का बंद कर सकते हैं, उनका योग कम होगा, हमें तो अधिक योग वाला चाहिए, इसलिए वो पर्याप्ति से पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय वगैरह वगैरह कंडीशन लगाए। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य गति 4 जाति, ये अलग अलग लेना, यानी द्विंद्रिय जाति, तीनिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति, एक इंद्रिय जाति की बात ने छोड़ ली अभी। एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट लब्धि अपर्याप्त के साथ हुआ। अभी ये जो मनुष्य गति के साथ मिनिमम बंध 25 का होगा, जब मनुष्य का अपर्याप्त का बंध हो रहा है और द्विंद्रियादि का भी अपर्याप्त का बंध कर रहा है, तो 25 वाला स्थान होगा। फिर इसके लिए आप वो स्थान की बात पढ़ लेना कर्म कांड से, बहुत आसान है, उसमें समझाई दिए। तो मनुष्य गति चार जाति औदारिक शरीर अंगोपांग, ये शब्द पूरा एक शब्द ले लेना, क्योंकि अंगोपांग का बंधु द्विंद्रिय आदि के साथ होगा। वो जो हमने 23 वाला स्थान था उसमें तो अंगोपांग नहीं बन रहा था, तो यहाँ मिनिमम प्रकृति और अंगोपांग बन रहा है, ये 25 वाला स्थान है। असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, क्योंकि द्विंद्रिय आदि जीव है उसके साथ सहनन बंधेगा, वो भले अपर्याप्त हो या पर्याप्त हो। और जो अपर्याप्त जीव है, मनुष्य अपर्याप्त, या ये सारे जो द्विंद्रिय आदि अपर्याप्त है, उसके साथ असंप्राप्त सुपाटिका सहनन ही बंधेगा। अन्य दूसरे सहनन उसके साथ नहीं बंधेगा, इसलिए उसको अकेले को यहाँ लिया। मनुष्य गत्यानुपूरी, क्योंकि गति ऊपर लिखे हैं। और त्रसके, ये त्रस अपर्याप्तम के ये सारे स्थान है 25 वाला, यानी त्रस का उत्कृष्ट बंध तो प्रदेश बंध यहीं पर होगा। उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अब इन प्रकृतियों 25 का स्थान बांधने वाला जीव चाहिए। नारकी तो ये अपर्याप्त को नहीं बांधेगा, देव भी नहीं बांधेंगे, रहे तो मनुष्य 3 इंच। अभी उसमें भी वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और वो उत्कृष्ट योग वाली कंडीशन लगा लेंगे। तो कहते कौन है स्वामी? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म की 25 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला। क्योंकि भले 25 बांधे, परंतु आयु के बंध करते समय अगर 25 बांधता है तो बंटवारा 8 में हो जाएगा, तो नाम कर्म के खाते में वैसे भी कम जब आएगा, हमको ज्यादा चाहिए। तो जब आयु नहीं बन रही है, 7 कर्मों का बंध हो रहा है, तब लेना इसको। और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर 2 गति का पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि जीव, क्योंकि अपर्याप्त तो नाम कर्म बांध रहा है और द्विंद्रिय आदि बांध रहा है, उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अब देवगति देखो, देवगति बनती है ना तब भी 28 प्रकृतियां बनती है, तो देवगति बांधने वाले कौन हो सकते हैं? मनुष्य तीर मिथ्या दृष्टि हो गई कि समय दृष्टि हो गई, दोनों हो सकते हैं, उत्कृष्ट योग की कंडीशन रखेंगे। तो देवगति वैक्रियक शरीर समचतुर संस्थान वैक्रियक अंगोपांग देवगत्यानुपूर्वी प्रशस्त विहाय गति। देखो अभी तक तो अभी तक तो विहाय गति अपर्याप्तम को तो नहीं बन रही थी, नारकी को तो अप्रशस्त बन रही थी, 28 के स्थान में प्रशस्त विहाय गति देवगति के साथ बनती है। सुभग सुस्वर और आदेय के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? कि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म के 28 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर 2 गति का, मनुष्य 3 इंच है ये देवगति बांधने वाले, पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि दोनों को लिया ना, उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ख्याल में आ रहे हैं ना बातें? आप कहेंगे मनुष्य गति भी तो समय दृष्टि बांधते, परंतु उसका उत्कृष्ट तो 25 वाले स्थान में है, 25 वाला ने मनुष्य अपर्याप्त का बंद करने वाला, वो तो समय दृष्टि करेंगे नहीं, इसलिए वहां मिथ्या दृष्टि दिया। हाँ, नरक गति के साथ भी वैक्रिक है, परंतु ये समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को लेना था ना, इसलिए इसको यहाँ पर ले लिया, परंतु वहाँ समय दृष्टि को नहीं लेना। हाँ, इतना डिफरेंस है। नरक गति के साथ वैक्रिक को नहीं लिया है उन्होंने, परंतु वहाँ पर भी यानी दोनों के समान होना चाहिए वैसे, वही तो यानी दोनों जगह होगा, क्योंकि वहां पर भी उत्कृष्ट योग वाला लिया, नरक गति बांध रहा है, यहाँ देवगति के साथ उत्कृष्ट योग के साथ वो बंध रही है, परंतु वैक्रे को यहाँ लिया है, वहां नहीं लिया उन्होंने। मुझे भी पढ़ते समय है ना, ना कौन कह रहे, वहां उन्होंने उस लिस्ट में नहीं लिया। नरगति के साथ क्या लिया था, नरगत्यानुपूर्वी लिया था, दुस्वर लिया था और अप्रशस्त विहार गति ली थी। यहाँ लिया है दोनों को लेना था, इसलिए यहाँ उसको ले लिया। वहां वो प्रकृतियां मात्र मिथ्या दृष्टि को बंधी थी, इसलिए वो ग्रुप अलग किया। अब यहाँ देवगति के साथ छोड़ दो, अकेले एक एक प्रकृति को सिंगल पकड़ो।
हाँ।
अभी केवल वैकृत शरीर को देखो, कोई मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि, कंडीशन क्या है। यहाँ देवगति बांधने वाला नहीं लिखा था, नाम कर्म की 28 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, यानी वैकृत शरीर का उत्कृष्ट करने वाला कौन है, तो सब पर्याप्ति से नहीं, नरगति का मत कहो, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ जी, संगी पंचेंद्रिय जी, हाँ, 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और नाम कर्म के 28 बंध रहे, तो उसमें दोनों आ जाएगी, वैकृत शरीर और वैकृत अंगोपांग के लिए। नरक गति के साथ भी 28 हो सकता है, देव गति के साथ भी 28 का हो सकता है, क्योंकि वो कंडीशंस उन्होंने किसी कौन सी गति बंध रहे ऐसा नहीं, 28 का बंध कर रहा ये लिखा रहा। देव गति के साथ समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों हो गए, नरक गति के साथ मिथ्या दृष्टि हो गई। नहीं नहीं उनको भी पता है,
नहीं नहीं वो मैं नहीं जानना चाहती,
वैकृत का
इसलिए
लेना है, इसमें वैकृत शरीर के लिए ऐसा सोचना है कि नहीं नहीं पर्याप्त है, 28 का बंध कर रहा है, 7 कर्म बांध रहा है और मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि। अभी 28 का बंध कर रहा है इतना ही कहा, देवगति का या नरगति का नाम नहीं लिया, इसलिए वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग में दोनों ही घटित हो गए। ख्याल में, अकेले देवगति की बात करनी है तो वहां समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि वो भी दोनों आते हैं, वैकृत शरीर के लिए भी समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि आते हैं, परंतु वो दुस्वर और अप्रशस्त विहार गति के लिए मात्र नरक गति का बंद करने वाला नहीं है। ख्याल में आती बात, यानी ये भले इकट्ठे सब बताए हैं परंतु एक एक प्रकृति को अलग सोचना, यानी वैकृत शरीर कौन मान रहा है, 28 का बंध करने वाला है, पर्याप्त जीव है, 7 प्रकार के कर्म बांध रहा है, उत्कृष्ट योग में अवस्थित है, इतना देर मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि। नहीं नहीं वही की रिक्शा है, आगे बढ़े हम आहार उद्विक के, मिला कहाँ पढ़ रहे, देखो आहार उद्विक को बांधने वाले कौन है, तेज
मनुष्य
गुणस्थान सातवां उसका उदय छठे में बांधने वाली सातवें आठ। अब आहार द्विक जब बनती है तो प्रकृतियां कितनी बनती है साथ में, बोलो
30
या 31। आहार द्विक जो बांध रहा है मुनिराज बांधते वो तो देवगति का बंध है, देवगति का बंध 28 का होता है, आहार द्विक एडिशनल हो जाएगी तो 30 हो जाएगा, यदि वो तीर्थंकर का बंद करता तो 31 हो जाएगा। हाँ, परंतु 30 का बंद करने वाला ऐसा कहना पड़ेगा, हाँ 31 का बंद करने, नहीं 31 का भी करने वाला आहार का बंद कर सकता है, परंतु उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा में हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा नहीं, पर पहले ही नक्की कर लेते, तो आहार द्विक के उत्कृष्ट प्रदेश बंद का स्वामी कौन है, तो कहते हैं नाम कर्म की 30 प्रकृतियों के साथ है ना, 30 सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, क्या ये बताने की आवश्यकता थी?
हाँ,
क्योंकि सातवें गुणस्थान में आयु का बंध हो सकता है, इसलिए यहाँ बता दें सातवें तक बंध है ना, जिसने छठे में शुरुआत किया वो सातवें तक बंध चलता है, और वहाँ ये 30 वाला भी स्थान हो सकता है नाम कर्म का, इसलिए कंडीशन डाली
आयु कर्म बांध रहा है
और 30 का बंध, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हर उंगली को बांधने वाले हर बार वो सातवें में आएंगे तो बांधते ही रहेंगे। देवगति आहार की युक्त, देवगति आहार की युक्त 30 वाला स्थान, यानी वो 30 प्रकृति होंगी ना, देवगति प्लस आहार। आहार की युक्त युक्त है ना, वो वन ऑफ द प्रकृतियां है, ये 30 वाला स्थान। तो कहते उत्कृष्ट योग से युक्त चाहिए, अप्रमत्त संयत जीव, आहार द्विक के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अपूर्वकरण वाले को नहीं लिया, आयु का बंध तो वहां है ही नहीं है, पूर्वकरण को भी ले सकते थे ना हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चार संस्थान और चार सहनन के, हाँ, उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म की 29 प्रकृतियों के साथ। देखो ये तीरियंच द्विंद्रियादि जो है पर्याप्त जीव है, या मनुष्य जीव है, मनुष्य का बंध कर रहा है, मनुष्य पर्याप्त संबंधी, वहां 29 प्रकृतियां बनती है। 30 के साथ भी ये बंधेगी, परंतु वहां प्रकृति ज्यादा है वो नहीं लेंगे, यानी उद्योग के बंध के साथ भी इसको इसका बंध होगा, परंतु वो हमको यहाँ नहीं लेना। तो देखो क्या कहते हैं, चार संस्थान चार सहनन के, नहीं उद्योग को छोड़कर, देखो देवों के तो 28 देखे थे हमने, परंतु देवों के साथ वैकृत शरीर है तो सहनन नहीं बनता, और यहाँ सहनन बनता है, इसलिए यहाँ 29 प्रकृतियां हो जाती है। मनुष्य तीरंज संबंधी बंध है, प्रकृतियां 29 हो जाती है, तो 29 प्रकृतियों का बंध कर रहे हैं और सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहे हैं। उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर चार गति का, तो मनुष्य गति धीरंज गति तो चारों गति के जीव मानते हैं, पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। देखो सम्यक दृष्टि तो वज्रभूषण नारायण सहनन को ही बांधेगा, और उत्कृष्ट सहनन हमने ऊपर संस्थान में से समय चतुर्थ संस्थान में देवगति के साथ लिया था, जब 28 का बंध होता है तभी लिया था। कुंडक संस्थान को कब लिया था? 23 वाले के साथ लिया, इसलिए बीच वाले चार लिए। तो सब ये बताएं, मिथ्या दृष्टि जी उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। वज्रषभ नारायण सहनन के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? नहीं, सम्य दृष्टि भी होगा मिथ्या दृष्टि भी होगा, मिथ्या दृष्टि भी उसको बांध सकता है, बांधने वाला चाहिए। नहीं, ये बांधने वाले की बात चल रही है, कौन बांध रहा है? सातवें नरक में जाने वाला तो सहनन बांध ही नहीं रहा है, आने वाले। देखो फिर से मिथ्या दृष्टि छह सनन को बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है, वज्रेश्वर नाराज को भी। ये बीच वाले जो चार लिए थे वो मात्र मिथ्या दृष्टि के हो, ये समय दृष्टि उनको नहीं बांधता। समय दृष्टि तो वो उत्कृष्ट वाला एक ही बांधता, इसलिए उसके लिए मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि दोनों बांधते हैं। तो वज्रेश्वर नाराज सहनन के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? वे सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म की 29 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, यानी आयु का बंध तभी नहीं है तब लेना है। उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर 4 गति का, पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि, उक्त प्रकृति के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी। देखो संस्थान में उत्कृष्ट संस्थान तो 28 मिनिमम प्रकृतियां है, वहां लिया देवगति के साथ, और बाकी जो हुंडक संस्थान था वो तो एक इंद्रिय के साथ भी बनता है, इसलिए वो 23 वाले स्थान में ले लिया। बीच वाले 4 29 वाले स्थान में लेना, वैसे बनते 30 वाले स्थान में भी, परंतु हमें मिनिमम प्रकृतियों के साथ बनने वाला चाहिए, इसलिए उसको ले लिया। अब परघात उच्छ्वास पर्याप्त स्थिर और शुभ के, देखो ये प्रकृतियां पर्याप्त के साथ बंधेगी, तो पर्याप्त के साथ मिनिमम वाला प्रेरणा भी ना बताएंगे, पर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है और प्रकृतियां मिनिमम चाहिए 25 वाले, एक इंद्रिय पर्याप्त के साथ, क्योंकि स्थिर शुभ उसके साथ भी बंधेगी। उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से, अभी ये बांधने वाला कौन है वो ले रहे हैं, एक इंद्रिय पर्याप्त का बंध कौन से जीव कर सकते हैं बोलो?
देव मनुष्य
और तीन, हमने पढ़ा नहीं पहले, ये सोचना है हमको, मैंने भी नहीं पढ़ा है। हाँ तो कहते सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, नाम कर्म की 25 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर 3 गति का, पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि जीव, क्योंकि एक इंद्रिय का बंध कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि होगा, यानी मनुष्य है तिर्यंच है और देव भी, क्योंकि एक इंद्रिय पर्याप्त का बंध करने वाले तो देव भी है, इसलिए उसको भी लिया। नारकी एक इंद्रिय का बंध ही नहीं कर सकते, स्वामी ने वो बांधने वाले कौन है उसकी चर्चा है, और बंध कौन सा करे तो 25 वाला एक इंद्रिय पर्याप्त का। अब आतप और उद्योग के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? देखो आतप तो एक इंद्रिय के साथ ही बंधेगी, पर्याप्त एक इंद्रिय, उसका स्थान 26 वाला होगा। उद्योग तो 30 वाले स्थान में भी बनते हैं, और एक इंद्रिय के साथ बंधेगी तो 26 वाले स्थान में भी बनेगी। हाँ तो यहाँ पर ले लेना उसको, 26 वाला स्थान लेना। तो स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म की 26 प्रकृति, आई ना बात, 26 प्रकृतियों के साथ। देखो कल हम केवल नाम कर्म की इतनी प्रकृति कहते तो कुछ नहीं समझ में आता, हमने देख लिया ना वो, जरा रिवाइज कर लिए कौन कौन सी होती है, वो अभी काम आएगी। 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, यानी आगे तभी नहीं बांध रहा है, और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर 3 गति का, यहाँ भी एक इंद्रिय को लिया है इसलिए मनुष्य तिर्यंच और देव को लेना है, ये पर्याप्त संबंधी है। आतप और उद्योग पर्याप्त के साथ बनती है और पर्याप्त के साथ नहीं बनती, तो 3 गति का, पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि जीव उक्त 2 प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म की 29 प्रकृतियों के साथ। ये 29 प्रकृतियां कैसे लेना लक्ष्मी जी? देव प्लस तीर्थंकर 28 प्लस है। नरगति के साथ बंधेगा कि नहीं बंधेगा? नरगति मिथ्या दृष्टि को बंधे, मनुष्य के साथ तीर्थंकर का बंध होगा? तो वो 30 का बन जाएगा, मनुष्य का 29 का और तीर्थंकर 30 हो जाएगा। हमें मिनिमम चाहिए इसलिए 29 वाला ही लेना है। नरगति के साथ बनती ही नहीं है, नरगति मिथ्या दृष्टि को बनती है, तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि को बनती है। तो नाम कर्म की 29 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर कौन लिया? मनुष्य सम्यक दृष्टि जी। आप कहेंगे देवगति तो 3 इंच भी बांधते पर वो तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध सकते, इसलिए अकेले मनुष्य रहेगी। मनुष्य सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। गुणस्थान बताएंगे अश्विन भाई?
4 से 7।
क्यों ऊपर का 8वां क्यों छोड़ा? नहीं आप ले सकते तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। 8वें तक बनती है नहीं? 8वें गुणस्थान वाला भी देव और तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला 29 का बंध करेगा है ना? तो उसका जब उत्कृष्ट योग होना चाहिए बस इतनी कंडीशन।
तो यहाँ हमने 29 प्रकृति में देव प्लस तीर्थंकर दिया ना, मनुष्य
बांधने वाला मनुष्य और बांध रहे देवगति का 28 प्लस तीर्थंकर
बांध रहे देवगति बांध रहे
29 का बांध रहे। यहाँ तो केवल उन्होंने इतना ही लिखा 29 का बंद कर रहा है, हमें देखना है कि 29 वाला कौन सा बंद कर रहा है। हाँ देवगति प्लस वही तीर्थंकर
मनुष्य ने तो देवगति के
साथ क्योंकि देव बांधता होगा तो मनुष्य वो 30 का स्थान बांधेगा। देव यदि मनुष्य गति के साथ तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं तो उनका 30 वाला स्थान हो जाता है। सहना एक्स्ट्रा हो जाएगा, नारकी भी बांधेंगे तो वही बात है। आदेश से देख लेते थोड़ा जितना होगा फिर कल रिपीट करेंगे, वैसे तो 10 बजने को है। देखो आदेश से ने भी नारकियों में बांधने वाले नारकी हाँ। पांच ज्ञानावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, उच्च गोत्र और 5 अंतराय के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? देखो हमें ये सोचना है, पांच ये समय दृष्टि बांधता है कि मिथ्या दृष्टि दोनों बांधती है, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक नारकी है, साता असाता भी बांधते हैं, ज्ञानावरण भी बांध रहे हैं, उच्च गोत्र भी बांध रहे हैं, 5 अंतराय और उच्च गोत्र का बंधन मिथ्या दृष्टि भी करते हैं। जो बंधेगा तब जो किसी के योग उत्कृष्ट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, अन्यतर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नारक दोनों ही हो सकते कोई भी, उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यानी ये ऐसी प्रकृति के लिए वो नीचे ऊपर सभी जगह मिथ्या दृष्टि को भी बनती है, सम्यक दृष्टि को भी। योग ज्यादा होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। वो बताएंगे बात में। हाँ अभी त्यांग वृद्धि 3 ये मिथ्या दृष्टि के होगा, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी 4, स्त्री वेद नपुसक वेद और नीच गोत्र के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, अन्यतर मिथ्या दृष्टि योग, उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी। अब 6 दर्शनावरण। हाँ दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय
सब पर्याप्त
हाँ। वहाँ परिणाम योग शुरू हुआ है, परंतु उसमें से जो उत्कृष्ट योग है वो छह पर्याप्तियों से पूरे होते होने तक वो उत्कृष्ट योग नहीं होगा। परिणाम वाला गोलमान चालू हो गया वहाँ पर, यानी उसमें अवस्थित आदि बातें हुआ हो सकती है। असंख्यात गुना उत्कृष्ट नहीं है, एकांत वृद्धि से वो अधिक है। जहाँ शरीर पर्याप्ति पूरी हुई वहाँ एकांत वृद्धि से वो असंख्यात गुना बढ़कर हो गई, परंतु अभी उनमें से पर्याप्त जीवों में से जो उत्कृष्ट है वो सब पर्याप्ति उनसे पर्याप्त हुआ लिखा ना, यानी ये तो एक दो पर्याप्ति पूरी हुई, अब और चार पर्याप्ति बाकी है, उसके बाद वो उत्कृष्ट तक पहुंच सकता है। वो तो एकांत वृद्धि से तो उसके जगन्य भी अधिक है, एकांत वृद्धि के उत्कृष्ट से परिणाम योग का जगन्य भी असंख्यात गुणा अधिक है। हाँ मैं बता रही हूँ, परंतु यह उसके उत्कृष्ट सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है। अरविंद भाई ने जो ये नोट कर दिया, हाँ यानी गोलमान में से उत्कृष्ट कब होगा, सभी पर्याप्ति पूरी होने के बाद पश्चात। ऊपर जो देखो आपने पूछा था ना, ऊपर क्यों जो सम्य दृष्टि को भी बांधती है वगैरह वगैरह, तो यहाँ जो लिखे छह दर्शनावर है वहाँ क्यों नहीं लिया, ऐसा पूछा था। तो पांच ज्ञानावरण यानी जो प्रकृति है ना पांच का ग्रुप, वो मिथ्या दृष्टि को भी पांच बन रहे, वहां पर भी वहां चलेंगे छह दर्शनावरण। मिथ्या तो में नौ के साथ बन रहा है और वहां अकेले छह बन रहे हैं, डिफरेंस होगा ना। तो छह दर्शनावरण के समय दृष्टि कहेंगे और पांच ज्ञानावरण के लिए समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को कहेंगे। बनते पर नौ के साथ बनते हैं, नौ में डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ मात्र छह बनते हैं, इसलिए वैसा भी हम वो स्थिति और अनुभव की सोचते हैं ना थोड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इसके पढ़ते पढ़ते हम यूज्ड हो जाएंगे इसको। तो यह छह दर्शनावली है, बारह कषाय, जैसे बारह कषाय नीचे भी बन रहे हैं परंतु तो सोलह कषाय मिथ्या तो इनमें सब में विभाजित हो रहे हैं, यह मात्र बारह कषाय बन रहे हैं। सात नौ कषाय उनके कौन से दो छोड़े, हाँ श्रीवेद और नपुंसकवेद जो समय दृष्टि के नहीं बन रहे। उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर समय दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। देखो समय दृष्टि समझ में है ना, बात
मिथ्या दृष्टि को नहीं लिया,
मिथ्या दृष्टि को नहीं लिया, उसके भी हास्य रति और शोक रति बन रहे, बैजुगुप्त उसके भी बन रहे, क्योंकि वो जो कोई सर्वघाती का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ संख्या देख रहे प्रदेशों की, नहीं समझे।
ज्ञात
है
तो चार गुण स्थान भी
है, हाँ चार गुण स्थान है, हाँ परंतु वो तो मिथ्या तो और अनंत अनुबंधी नहीं बंधेगा ना, तो अनंत वा भाग भी छोटा होगा ना उसका,
वो डिफरेंस पड़ेगा,
पड़ेगा थोड़ा डिफरेंस तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो प्रदेशों की संख्या एक एक में गिनेंगे नहीं है,
प्रदेश तो सबको सर्वगति में तो वो ही जाएगा ना, अनंतवाद जो जाता है वो तो अनंतवाद ही रहेगा ना, कि उसमें कुछ फर्क पड़ेगा
तो भी कहेंगे। इसे समय दृष्टि को ले देखो, वहां पर भी हास्य रति में ऐसा लिया था, समय दृष्टि को
लिया था।
तीरियन चायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंद अभी हम रुकेंगे, कल दोबारा ले लेंगे यहीं से आदेश से नारदगति से रिवीजन हो जाएगी हमारी। जावानी के जानते सूजे लो सोवानी मस्तक सदा देत
नमो 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 नमो